एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तेरा जीवन मेरा अंधियारी दुनिया चाहे हो, अंधियारी दुनिया चाहे हो, जोत तुम्हारी पाती हूँ यीशु, जोत तुम्हारी पाती हूँ। क्रूस तेरा जीवन मेरा है, प्यार का तू ही सोता है यीशु, प्यार तुझी से होता है। क्रूस तेरा जीवन मेरा है,
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हमारे मनों को तू खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम तेरे वचनों को सुन करके समझने सके और उसके अनुसार तेरा रास्ता में चलने सके। पिता, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो, उन्हें तू अपने वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मृत्यु का स्वरूप। आइए हम आज मृत्यु का स्वभाव या स्वरूप को समझे। यदि मृत्यु जीवन का विराम है, तो बाइबल किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति के बारे में क्या कहती है? क्या बात है जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है कि मसीह विश्वासी बाइबल की इस शिक्षा को समझें? मृत्यु एक नींद है, मृत्यु पूर्ण विनाश नहीं है, यह तो केवल अस्थाई बेहोशी की आशा है जिसमें व्यक्ति पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहा है। बाइबल बार बार इसे मध्यवर्ती निंद्रा की अवस्था कहती है। इनकी मृत्यु का उल्लेख करते हुए पुराने नियम में दाऊद, सामुएल और इज़राइल और यहूदा के अन्य राजाओं को अपने पूर्वजों के साथ सोते हुए वर्णित किया गया है। बाइबल में हम इसे इस तरह पाते हैं, पहला राजा 2:10, 11:43, 14:20, 31, 15:8 तथा दूसरा इतिहास 21:1, 26:23 इत्यादि। अय्यूब ने मृत्यु को नींद कहा, देखिए अय्यूब 14:10-12, जैसा कि दाऊद ने भजन संहिता 13:3 और यिर्मयाह 51:39-57। यहाँ दानियल ने भी इस मृत्यु को निंद्रा से तुलना किया है, हम पाते हैं इसे दानियल 12:2 में। नया नियम उसी कल्पना का उपयोग करता है, आयर की मृत पुत्री की अवस्था को संकेत करते हुए मसीह ने कहा कि वह मरी नहीं परंतु सो रही है। हम पढ़ते हैं इसे मती 9:24 और मरकुस 5:39 में। उसने मृत लाजर का भी इसी तरह उल्लेख किया, यहूना 11:11-14। मती ने लिखा कि मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात कई सोए हुए पवित्र लोग जी उठे, मती 27:52। और स्तिफनुस के बलिदान को दर्ज करते हुए लुका ने लिखा, वह सो गया, प्रेरितों के काम 7:60। दोनों पौलुस एवं पत्रस ने भी मृत्यु को नींद कहा, 1 कुरिन्थियों 15:51-52 और 1 थिस्सलुनीकियों 4:13-17 तथा दूसरा पत्रस 3:4। नींद के रूप में मृत्यु का बाइबल वर्णन स्पष्ट रूप से इसके स्वरूप के अनुकूल है, जैसा कि निम्नलिखित तुलनाओं से पता चलता है। आइए हम कुछ बाइबल के अन्य पदस्थलों को देखें। पहला, जो सोते हैं वे बेहोश हैं, मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, कहता है सबोपदेशक 9:5। दूसरा, नींद में सचेतन सोच बंद हो जाती है, उसका प्राण भी निकलेगा, उसी दिन उसकी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी, भजन संहिता 146:4। तीसरा, नींद पूरे दिन की गतिविधियों का अंत कर देती है, अधोलोक जहां तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है, सबोपदेशक 9:10। चौथा, नींद हमें उन लोगों से और उनकी गतिविधियों से अलग करती है जो जागे हुए हैं, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा, पद 6। पांचवा, सामान्य नींद भावनाओं को निष्क्रिय कर देती है, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी, पद 6। छठा, नींद में मनुष्य परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, मृतक तो या की स्तुति नहीं कर सकते, कहता है भजन संहिता 115:17। और सातवां, हम देखते हैं नींद जागने की पूर्व कल्पना करती है, वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, यूहन्ना 5:28-29। व्यक्ति मिट्टी में लौट जाता है यह समझने के लिए कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह समझना आवश्यक है कि उसका स्वरूप किससे बना है। बाइबल व्यक्ति को एक जैविक इकाई के रूप में चित्रित करती है, कभी कभी यह प्राणी शब्द का प्रयोग संपूर्ण व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए व कभी कभी स्नेह व भावनाओं के लिए उपयोग करती है, लेकिन यह नहीं सिखाती कि मनुष्य दो अलग अलग भागों से मिलकर बना है। शरीर व प्राण केवल एक साथ मौजूद होते हैं, वे एक अविभाज्य संघ बनाते हैं। मानवता की सृष्टि में भूमि की मिट्टी या पृथ्वी का तत्व एवं जीवन की श्वास के मेल ने एक जीवित प्राणी या आत्मा को उत्पन्न किया। आदम ने एक अलग इकाई के रूप में एक प्राण या आत्मा को प्राप्त नहीं किया, वह जीवता प्राणी बना, उत्पत्ति 2:7। मृत्यु पर यह उल्टा होता है, भूमि की मिट्टी से जीवन की श्वास घटाने से बिना किसी चेतना के एक मृत व्यक्ति या मृत प्राणी बन जाता है, भजन संहिता 146:4। श्वास निकलता है तो मनुष्य मर जाता है। शरीर को बनाने वाले तत्व उसी पृथ्वी में लौट जाते हैं जहां से वे आए थे, उत्पत्ति 3:19। शरीर के अलावा प्राण या आत्मा का कोई चेतन अस्तित्व नहीं है, और शास्त्र यह नहीं बताता है कि मृत्यु होने पर प्राण या आत्मा एक चेतन इकाई के रूप में जीवित रहती है। वास्तव में जो प्राणी पाप करते वही मरते हैं, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, यजकियल 18:20 कहता है। मृतकों का निवास स्थान कहाँ है? मृत्यु होने पर लोग जिस स्थान पर जाते हैं, पुराना नियम उसे इब्रानी में सियोल एवं नया नियम में उसे यूनानी में हेड्स कहता है। पवित्र शास्त्र में सियोल का साधारण सा अर्थ कब्र से होता है, हेड्स का अर्थ सियोल के समान है। सभी मृतक इसी स्थान में जाते हैं, भजन संहिता 89:48। धर्मी एवं दुष्ट दोनों, याकूब ने कहा मैं अधोलोक सियोल में उतर जाऊंगा, उत्पत्ति 37:35। जब पृथ्वी ने दुष्ट कोरह और उसके साथियों को निगलने के लिए अपना मुंह खोला तो वे जीवित ही अधोलोक या सियोल में जा पड़े, गिनती 16:30। मृत्यु होने पर सियोल पूर्ण व्यक्ति को प्राप्त करती है, जब मसीह की मृत्यु हुई तो वह कब्र हेड्स में चला गया, परंतु पुनर्स्थान के समय उसकी आत्मा ने कब्र हेड्स को छोड़ दिया था। हेड्स प्रेतों के काम 2:27-31 या सियोल भजन संहिता 16:10। जब दाऊद ने चंगाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया तो उसने गवाही दी कि उसका प्राण अधोलोक सियोल में से निकाला है। भजन संहिता 30:3। कब्र चेतना का स्थान नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक नींद है, इसलिए मृत पुनर्स्थान तक कब्र में बेहोशी की स्थिति में रहेंगे, जब कब्र हेड्स अपने मृतकों को दे देगी। प्रकाशित वाक्य 20:13। आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है, यद्यपि शरीर मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। सुलेमान ने कहा कि मृत्यु के समय मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। सबोपदेशक 12:7। यह धर्मी और दुष्ट दोनों के लिए सच है। कई लोगों ने सोचा है कि यह पद इस बात का प्रमाण देता है कि व्यक्ति का सार मृत्यु के पश्चात भी निरंतर जीवित रहता है, परंतु बाइबल में आत्मा के लिए ना ही इब्रानी ना ही यूनानी शब्द क्रमश रुआक व न्यूमा एक बुद्धिमान इकाई को संदर्भित करते हैं जो शरीर से अलग एक सचेत अस्तित्व के लिए सक्षम है, बल्कि ये शब्द सांस को संदर्भित करते हैं, व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए आवश्यक जीवन की चिंगारी, वह जीवन सिद्धांत जो जानवरों और मनुष्यों को जीवंत करता है। सुलेमान ने लिखा, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों कि वही दशा होती है, जैसा एक मरता वैसा ही दूसरा भी मरता है, सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण रुआग ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण रुआग नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, यह कौन जानता है? सबोपदेशक 3:19-21। इस प्रकार सुलेमान के अनुसार मृत्यु के समय मनुष्य और पशुओं की आत्माओं में कोई अंतर नहीं होता है। सुलेमान का यह कथन कि आत्मा रुआग परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया, यह दर्शाता है कि जो कुछ परमेश्वर के पास लौटता है वह केवल जीवन सिद्धांत है जिसे उसने प्रदान किया था। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आत्मा या श्वास शरीर से अलग एक चेतन इकाई थी। इस वाक की तुलना जीवन की श्वास के साथ की जा सकती है जिसे परमेश्वर ने प्रथम मानव प्राणी के बेजान शरीर को चेतन करने के लिए फूंका था। देखिए और तुलना करिए उत्पत्ति 2:7 से। संपूर्ण शास्त्र में सामंजस्यता है। कई ईमानदार मसीह जिन्होंने मृत्यु के विषय में बाइबल की संपूर्ण शिक्षाओं का अध्ययन नहीं किया है, वे इस बात से अनजान है कि पुनर्स्थान होने तक मृत्यु केवल एक नींद है। उन्होंने यह मान लिया है कि अनेक अनुच्छेद इस विचार का समर्थन करते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा या प्राण का एक चेतन अस्तित्व है। सावधानी पूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि बाइबल की अविरोधी शिक्षा यह है कि मृत्यु चेतना की समाप्ति का कारण है। मृत्यु की प्रकृति पर पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं के इस दृष्टांत के लिए निम्नलिखित अंशों को समस्याएं उत्पन्न करने वाला माना गया है, लेकिन करीब से देखने से पता चलता है कि वे शेष पवित्र शास्त्र के साथ संपूर्ण सामंजस्य में हैं। पहला, राहेल की मृत्यु का उल्लेख करते हुए पवित्र शास्त्र कहता है, जब उसके प्राण निकल रहे थे, उत्पत्ति 35:18। यह अभिव्यक्ति केवल इस बात का संकेत देती है कि अपनी चेतना के अंतिम क्षणों में और अपनी अंतिम सांस के रहते उसने अपने बेटे को एक नाम दिया। अन्य अनुवाद इस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली। दूसरा उदाहरण है एलिया और मृत लड़का। जब एलिया ने प्रार्थना की कि सारफत की विधवा के मृत पुत्र की आत्मा वापस आ जाए, तो परमेश्वर ने लड़के को पुनर्जीवित करके उसे उत्तर दिया। पहला राजा 17:21-22। यह शरीर के साथ जीवन सिद्धांत के मिलन का परिणाम था, जिनमें से कोई भी जीवित या सचेत नहीं था जब वे अलग थे। तीसरा उदाहरण, पर्वत पर मूसा की उपस्थिति। रूपांतरण के पर्वत पर मूसा की उपस्थिति सचेत आत्माओं के अस्तित्व या स्वर्ग में सभी धर्मी मृतकों की उपस्थिति का प्रमाण प्रदान नहीं करती है। इस घटना से कुछ समय पहले यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि मरने से पहले उनमें से कुछ मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में देखेंगे। यह प्रतिज्ञा पतरस, याकूब और यूहन्ना के लिए पूरी हुई। मत्ती 16:28-17:3। पर्वत पर मसीह ने उन्हें परमेश्वर के महिमा के राज्य का एक लघु रूप दिखाया। वहां मसीह महिमामय राजा था, साथ में मूसा और एलिया राज्य की प्रजा के दो प्रतिनिधि। मूसा ने धर्मी मृतकों का प्रतिनिधित्व किया जिन्हें दूसरे आगमन पर कब्र से पुनर्जीवित किया जाना है, और एलिया ने धर्मी जीवित लोगों का प्रतिनिधित्व किया जिन्हें मृत्यु को देखे बिना स्वर्ग में उठा लिया जाना है। दूसरा राजा 2:11। यहूदा मूसा के विशेष पुनर्स्थान का प्रमाण अपना पत्री में देता है। मूसा के मरने और गाड़े जाने के बाद व्यवस्था विवरण 34:5-6, मूसा की देह को लेकर मिकाएल और शैतान के बीच विवाद हुआ। यहूदा की पत्री 9 पहाड़ पर मूसा की उपस्थिति से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शैतान प्रतियोगिता हार गया और मूसा को उसकी कब्र से पुनर्जीवित किया गया, जिससे वह मसीह की पुनर्स्थान शक्ति का पहला ज्ञात विषय बन गया। यह घटना आत्मा की अमरता के सिद्धांत का प्रमाण नहीं देती है, बल्कि यह शारीरिक पुनर्स्थान के सिद्धांत के समर्थन को प्रस्तुत करती है। और एक उदाहरण हम देखते हैं, कुछ करना और मसीह के साथ रहना। हम पाते हैं पौलुस के विषय में फिलिपियों की किताब में, फिलिपियों की पत्री में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। फिलिपियों 1:21-23। क्या पौलुस ने मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्ग में प्रवेश करने की अपेक्षा की थी? पौलुस ने मसीह के साथ रहने के विषय पर बहुत कुछ लिखा है। एक अन्य पत्र में उसने उन लोगों के बारे में लिखा जो यीशु में सोते हैं। दूसरे आगमन पर उसने कहा, धर्मी मृतकों को फिर से जीवित किया जाएगा और जीवित धर्मी लोगों के साथ वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। 1 थिस्सलुनीकियों 4:14-17। इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि फिलिपियों को लिखे अपने पत्र में पौलुस मृत्यु के समय क्या होता है इस पर विस्तृत विवरण नहीं दे रहा है। वह केवल मृत्यु और पुनर्स्थान के बीच की अवधि का कोई संदर्भ या स्पष्टीकरण दिए बिना अपने वर्तमान अशांत अस्तित्व को छोड़ने और मसीह के साथ रहने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। उसकी आशा अनंत काल तक यीशु के साथ प्रतिज्ञात व्यक्तिगत साहचर्य पर केंद्रित है। जो मर जाते हैं उनके लिए जब वे मृत्यु में अपनी आंखें बंद करते हैं और जब वे पुनर्स्थान के समय उन्हें खोलते हैं, उसके बीच कोई लंबा अंतराल नहीं है। क्योंकि मरे हुए लोग सचेत नहीं हैं और इसलिए उन्हें समय बीतने का कोई बोध नहीं है। पुनर्स्थान की सुबह मृत्यु के एक क्षण बाद आने वाली प्रतीत होगी। मसीह के लिए मृत्यु लाभ है, कोई और प्रलोभन, परीक्षण और दुख नहीं, और पुनर्स्थान पर एक शानदार अमरता का उपहार है। इसी का वह जिक्र कर रहे थे, इसी का बात पौलुस कर रहे थे कि उसे मर के परमेश्वर से मिलना अच्छा बात होगा। और लिखा है कि धर्मी लोग पुनस्थान में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय यीशु से बादलों में मिलेंगे। तो हमें यह गलत समझ नहीं होना चाहिए कि मरने के बाद कोई आत्मा भटकता है, उसमें सचेत है, ऐसा बाइबल नहीं सिखाती है। मरने पर शरीर मिट्टी में मिल जाता है और जीवन का श्वास, जीवन का शक्ति परमेश्वर के पास वापस चली जाती है। पुनर्स्थान की आशा है, पुनर्स्थान के समय धर्मी लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग ले लिए जाएंगे। आइए हम उस आशा को रखें और उस आशा में जिए, अपने जीवन को तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे अपने लोगों को लेने, हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएं और हम वहां पर अमरता में यीशु मसीह के साथ रहें और परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर हम सबों को, आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता। हम सबों के मन में तेरा आत्मा दे और यह विश्वास जो वचन तूने दिया है कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए दूसरी बार आ रहा है, हमें अपने जीवन को तैयार करने के लिए मदद कर पिता, कि हम जीवित तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने सके और तेरे संग रहने सके पिता। हमें मृत्यु से बचा और हमें अनंत जीवन दे, जिसे तूने हमें प्रतिज्ञा किया है यीशु मसीह में, उसे हमें दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।